ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। इस बीच झारखंड में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाद कल अवर सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। श्री कुमार चुनाव कार्यालय में एक पार्टी के प्रचार में लिप्त पाए गए। वहीं 11 राज्यों की 33 विधानसभा और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल प्रचार अभियान समाप्त हो गया। इन सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश तथा सिक्किम में 2-2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय में 1-1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। नांदेड़ संसदीय सीट समेत 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने कल निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि श्री गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में झूठ फैलाने का प्रयास किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निर्वाचन आयोग से श्री गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 726 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार इनमें छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 148 करोड़, ओडिशा के लिए 201 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 377 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में कल सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 10 हथियारबंद उग्रवादी मारे गए। सूत्रों के अनुसार जिरीबाम जिले के जाकुरधोर और बोरोबेकरा पुलिस थाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की चौकी पर कल दोपहर हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में उग्रवादियों की मौत हो गई। इस बीच मणिपुर के जिरीबाम जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल देश भर में कई स्थानों पर गहन छानबीन की। देश को अस्थिर करने की आतंकी गुट अलकायदा की साजिश के तहत कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की गतिविधियों के संबंध में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम में छापेमारी की गई। जांच से पता चला है कि संदिग्ध व्यक्ति बांग्लादेश स्थित अलकायदा नेटवर्क से सहानुभूति रखते हैं। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंधों, ऊर्जा, कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह उनके साथ निरंतर सहयोग के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 2030 तक रूस के साथ 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए संपर्क सुविधा, बाजार और निवेश को प्रोत्साहन देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल 66 अरब डॉलर है। इसे 100 अरब डॉलर का लक्ष्य अधिक वास्तविक लगता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में D30 नशा मुक्ति और विकलांगता जागरूकता शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होने वाली विकलांगता पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में नेपाल के राष्ट्रपति राम सहाय यादव ने नशा मुक्ति के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता और युवा आइकन पुरस्कार वितरित किए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाली लत के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भारत और नेपाल के प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायल सीमा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।